आए हम सब खुदावन के हजूर झुकें और उसकी रहनुमाई मांगेंगे कि आज जो नसीहत की और फायदा की बातें खुदा का बंदा पालूस रसूल तमोथियस को लिखता है हम सब के लिए भी फायदा मंद हो। तो हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, आज का कलाम जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी तफसीर देखने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं, हम सब के लिए खुदावंद बरकत का बायस हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम मसीही जिंदगी में और बेफायदा और फायदा की बातों पर गौर कर रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। सो पालूस रसूल के वसीला से कल हमने सीखा था कि बांसुरी की और बरबद की आवाज में फर्क है, और उसने एक मिसाल दी थी कि जब तक तरहाई की आवाज साफ सुनाई ना दे तब तक कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। पहला करिन्थियों उसका 14वां बाब, हमने उसमें ये 7वीं आयत से देखा था, और हमने उस बेवा की जिंदगी की मिसाल देखी थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खुदा से दुआ करने में हिम्मत ना हारो। बहुत दफा हमने सीखा था कि हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं वाजिया तौर पर खुदा के हजूर सही तौर पर नहीं होती। हम बहुत दफा मांगते हैं लेकिन समझदारी के साथ नहीं मांगते। तो हमने इस बात पर गौर की थी कि हम खुदा से दुआ करने में पहली बार हिम्मत ना हारे, दूसरा जब कभी मांगे वाजिया तौर पर मांगे, जिसमें पालूस रसूल ने गैर जुबानों की बात की थी कि गैर जुबानें बोलने वाला सुनने वालों के नजदीक क्या है, अजनबी है, अजनबी है, उसको उसकी समझ नहीं आएगी। सो इसलिए आज हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए पहला तमोथियस उसका 6वां बाप उसकी पहली आयत से सीखेंगे। पहला तमोथियस 6वां बाप उसकी पहली आयत से, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालकों को कलाम कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि कोई नौकर दो मालकों की खिदमत कर नहीं सकता, और ये बड़ी फायदा की बात है, अगर कोई नौकर दो मालकों की खिदमत करेगा तो वो दोनों को खुश कर नहीं सकता। जो इसी तरफ इशारा है कि अगर कोई इंसान दौलत का पुजारी है तो वो दौलत और खुदा को मान नहीं सकता, वो एक से वफादारी करेगा। क्योंकि बहुत दफा आगे चलकर हम देखेंगे कि दौलत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है। दौलत बुरी नहीं लेकिन उस बुराई की जड़ है जिससे बहुत से लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो चुका है। सो पालूस रसूल कहता है कि खुदा का नाम बदनाम ना हो। हम खादमों को, हम ईमानदारों को भी अपनी जिंदगी से खुदा का नाम, यीशु मसीह का नाम बदनाम नहीं करना, बल्कि क्या करना है, बुलंद करना है। आज बहुत दफा मसीहियों पर क्यों गैर कौमों को उंगली उठाने का मौका मिलता है? क्या खुदा गुनाहगार है? नहीं। क्या खुदा गुनाह की तालीम देता है? हरगिज नहीं। खुदा कहता है कि गुनाह के खिलाफ कि अगर तुम करोगे तो तुम उसका फल, उसका नतीजा क्या पाओगे? गुमराही पाओगे, सजा पाओगे, बीमारियां पाओगे। तो बहुत दफा मसीही ईमानदारों की जिंदगी खुदा के नाम को बदनाम करने का बायस बनती है। आगे चलकर पालूस रसूल बयान करेगा, और जिन मालक और जिनके मालक ईमानदार हैं और उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, ये फायदा की बात है। अगर आप ईमानदार हैं और आपके अंदर 10 या 1 या 2 बंदी बंदा काम करती हैं तो उनको हकीर ना जाने, उनकी रहनुमाई करें, ये फायदा की बात है। बल्कि इसलिए कि ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। ईमानदार क्यों हैं? क्योंकि वो अजीज हैं, मसीह में प्यारे हैं। सो आगे पालूस रसूल तमोथियस को نصیحت کرتا ہے، صلاح کرتا ہے، ان باتوں کی تعلیم دے. سو تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور ان اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے موافق ہیں، جو دینداری کے مطابق ہیں، جو دینداری کے تعلق سے ہیں، جو دینداری کی ہیں. موافق مطابق کا مطلب یہی ہے کہ جو دینداری کی باتیں ہیں جس کے بارے میں تم سن چکے ہو. سو ہم نے کل دیکھا تھا خدا سے دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو. آج ہم دیکھیں گے کہ وہ بے فائدہ باتوں سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے. سو آئیں ہم دیکھیں کہ وہ بے فائدہ باتیں کون سی ہیں جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم نہیں دیتا. اس میں سب سے پہلا پھل جو بے فائدہ پھل ہے وہ کون سا لگے گا؟ مغروری کا. کیا لکھا ہے؟ وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اب اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے. شوگر کا مرض ہے، پیٹ درد کا مرض ہے، کسی کو کوڑ کا مرض ہے، کسی کو برا سوچنے کا مرض ہے. یہاں پر بائبل مقدس یہ بیماری بیان کرتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو مسیح کی باتوں کو بدلتے ہیں ان کو کیا ہے؟ لفظی تکرار کرنے کی کیا ہے؟ بیماری ہے. لوگوں کو بیماری ہے جن سے کیا ہوتا ہے؟ حسد اور جھگڑا اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں. سو ہمیں ان بے فائدہ باتوں سے کنارہ کرنا ہے. بے فائدہ باتیں کون کون سی ہیں؟ مغروری. خدا کے لوگوں کو مغرور نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ حلیم. خدا کے لوگوں کو بحث کرنے والے تکراری لفظوں کے مریض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کا کلام درستگی سے اس کے پاک سخن بیان کرنے والے ہوں. سو پالوس رسول تموتھیس کو یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ اس دور میں لوگ آ کر، جن کو فلاسفر کہتے ہیں، فلسفے لکھنے والے، کہانیاں لفظوں کی تان چھان کرنے والے، اور بات کا کیا کہتے ہیں، بال کی کھال اتارنے والے لوگ، ان کو فلاسفر کہتے تھے، جس میں بہت سے یونانی، جس میں بہت سے یہودی، جس میں بہت سے دوسرے اقوام کے لوگ تھے، کہ وہ ایک لفظ کو لیتے تھے، اس پر تکرار کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے تھے. آج بھی بہت سے ایسے ہیں جن سے کیا ہوتا ہے؟ حسد، جھگڑا، بدگوئیاں، بدگمانیاں. اس لیے پالوس رسول تموتھیوس کہتا ہے ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ان میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ان میں سوچ کا تصاد ڈالتے ہیں. جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. خدا کی خدمت کے لیے آج افسوس کے ساتھ بھی اور نصیحت کے ساتھ بھی کہ بہت دفعہ خدا کی خدمت لوگ یا خدا کا نام جسے کہتے ہیں منہ میں یسو یسو اور بغل میں چھرا اپنے نفع کے لیے کرتے ہیں، اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں. ہم جو پادری ہیں، اپنے آپ کو گن رہا ہوں، بہت دفعہ اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں. ہم جو ایماندار ہیں بہت دفعہ اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں. خدا کے بندہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان سپاہیوں سے کیا کہا تھا؟ ہم رومی حکومت کے سپاہی ہیں اور ہمیں کیا روا ہے کہ ہم کریں؟ جو تمہاری تنخواہ ہے اس پر گزارا کرو اور اس سے زیادہ نہ حق نہ لو. سو پالوس رسول کہتا ہے ہاں، دیانتداری، دینداری، کنایت के साथ बड़े नफे का जरिया है। अगर हम ईमानदारी से अपनी ईमान की जिंदगी को बसर करते हैं तो वो जिंदगी हमारे लिए नफे का, फायदे का जरिया है। अगर नहीं करते तो पालूस रसूल बयान करता है हकीकत को, इस फायदा की बात को अपने पल्ले हम बांध लें, क्योंकि हम ना दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। मुझे याद है जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे, मेरा दोस्त था, वो बाबे बग्गे शेर को मानता था, वो बाबे बुल्ले शाह के तवीद दिए जलाता था और वो बाबे हनुमान की भी प्रस्तुति करते थे, और फिर वो बाबे शबाज कलंदर के भी क्या करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, और फिर वो 11वीं वाले का दूध भी बांटते थे। पड़ोसी दूध लेने के लिए एक कप चाय के लिए आ जाता था तो नहीं देते थे, लेकिन 11वीं वाले के लिए देज का दे देते थे। उसकी खीर बांटते थे, ठूठी पा के सुर, बहुत कुछ और। हम इस दुनिया में कुछ नहीं लेकर आते और कुछ भी यहां से लेकर नहीं जाते। उस जवान की क्या बात थी, मुझे याद है कि जब मैं मरूंगा मैं अपने घर वाले से कहूंगा कि मेरा पेट पैसों से भर दो, ताकि जब मैं खुदा के हजूर जाऊं उससे कहूंगा कि ये पैसे ले लो और मुझे बख्श दो। और मुझे उसकी बात पर आज भी हंसी आती है और उस वक्त भी, कि वहां पर पैसों से किसी की भी खलासी नहीं होगी। ना हम कुछ लेकर आए हैं, जिसके बारे में अय्यूब नबी कहता है, मैं नंगा अब की मां के पेट में से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा, मैं खाक हूं और फिर खाक में मिल जाऊंगा। पालूस रसूल तिमोथियुस को कहता है कि उन लोगों को जो अपने नफा के लिए सब कुछ करते हैं, उनसो ये सच याद दिला दे, कलीसिया को बता दे कि जो कुछ है उस पर कनायत करो, क्योंकि लिखा है 9वीं आयत, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। दौलतमंद होना बुरी ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर दौलतमंद होने की ख्वाहिश के पीछे ख्वाहिश बुरी है तो वो क्या है, बुरी है। खुदावन ने सबसे वादा किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रोज की रोटी दूंगा। खुदावन खुदा ने सुलेमान बादशाह को अब से, उस वक्त से लेकर अब तक, दुनिया का सबसे अमीर बंदा कहलाया। अय्यूब नबी दुनिया का बहुत अमीरों में से अमीर बंदा था। यह क्या है, खुदा की बरकत है। दाऊद नबी बादशाह था, वो भी बहुत अमीर था। खुदा के लोग, जब मूसा नबी ने कहा कि अब हदिया देना बंद कर दो, खुदा की हैकल के लिए, खुदा के खेमा के लिए, उस कुर्बानी के लिए हदिया देना बंद कर दो, बहुत ज्यादा हो गया। दौलत बजाते खुद बुरी नहीं है, दौलत खुदा की तरफ से, माल और दौलत क्या है, खुदा की तरफ से बरकत है। लेकिन जो नुकसान की बात है वो क्या है, जो कोई आजमाइशों में फंस कर, उसके जाले में फंस कर बुरी ख्वाहिशों का ताबा होता है, बुरी ख्वाहिशों से पैसा बनाना चाहता है, उसके लिए क्या है, आजमाइश है, और वो बंदा नुकसान उठाएगा, उसे फायदा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा, जो आदमी आजमाइशों में फंसते हैं, बुरी ख्वाहिशों और बहुधा नुकसान पहुंचाने वाली बातों की पैरवी करते हैं। एक पैसा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं और कमाते हैं और खुदावंद आपको बरकत देता है। एक पैसा है कि आप उस बंदे को देखते हैं जो दिन रात चोरियां करता है, पैसा उसके भी पास है तो बरकत किस में हुई, किसी का हक चुराने वाले के पास या जिसने अपना मेहनत मसीने से कमाया है, जिसने मेहनत और अपने पसीने को बहाया है, उस चोर के पैसे में बरकत नहीं है। खुदावंद क्या फरमाता है अपने बंदा पालूस के वसीला से, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। इन लोगों ने जो कलीसिया में आकर रुपए पैसे 23 का 21 का वाक्या है, आज से 2 ढाई साल पहले की बात है। अब वहां पर 4 साल की बात है, रजेश ने कहा मुझे याद नहीं था, 4 साल की बात है जब वहां पर हम खुदा का कलाम देने के लिए गए, तो वहां पर एक बाबा था और उसने गालियां निकालना शुरू कर दी और उसने कहा कि भाग जाओ। क्यों उसने ये कहा? वहां पर एक टोला आया और उस टोले ने कहा कि जी जबूर 23 हमारे पीछे पढ़ो, आपके सोने को दुगना कर देंगे। नहीं, जबूर 23 पढ़ो, आपका जो रुपया पैसा है उसको हम दुगना कर देंगे, आपको मुनाफा होगा, आपको जगह मिलेगी। सो उन पखंडियों ने जो खुदा का नाम बदनाम घर घर कर रहे थे, मसीह का नाम लेकर लोगों का पैसा चुरा रहे थे, जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आप भी पखंडी हो। हमने कहा बाबा जी आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि खुदा के लोग खुदा के नाम से खुदा को बदनाम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि हम भी पखंडी हैं। जब हमने अपना तारफ करवाया कि हम आरवाला से हैं, यहाँ पर चर्च है, ये फरेबियों का या अपना कहते के दिखावा करने वाला चर्च नहीं, के जी पाई फेरू उस तो पिछे जी एक नुकरा उस रेत बस्ती या मसीहा दी बहुत वड्डी उते चर्च बांदा पिया वा जी, ते पिछले 20 सालों तो बनी जा रहा जी, चंदा दियो चंदा दियो जी, मैं 20 सालों तो आ रहा जी। हो खुदा का घर और 20 साल लगे, या तो फिर वो लोग खुद खा रहे हैं, या फिर खुदा की मर्जी नहीं जिसे 20 साल लग रहे हैं कि उसका घर अभी तक बना नहीं। सो ऐसी दौलत क्या है? हलाकत और बीमारी और बदबख्ती लाती है। इसीलिए लिखा है 10वीं आयत, सब मेरे साथ कहें, क्योंकि जर की, जर का मतलब है दौलत, जर का मतलब क्या है? दौलत। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छली कर लिया। दौलत की बुरी ख्वाहिश ऐसी एक जड़ है, बहुत सी जड़ें हैं। हर एक बीमारी के पीछे बहुत दफा डॉक्टर उस बीमारी को देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ का क्या करते हैं? सफाया नहीं करते। सो खुदा का कलाम हमारी सिर्फ मरम पट्टी नहीं करता, बल्कि उस गदूद को, गदूद पता है ना जी, जो जिस्म में जड़ पकड़ लेती है, उस गदूद को निकालता है। आज मसीहियों की जिंदगी में, उनके ईमानदारों की जिंदगी में बहुत सी ऐसी गदूदे हैं, ऐसी जड़ें हैं जो ईमानदारों की जिंदगियों को तबाह हो बर्बाद कर रही हैं। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि उन बेफायदा बातों से किनारा करें। बेफायदा बातों से किनारा करें जिससे इंसानों को, आदमियों को, ईमानदारों को कुछ फायदा नहीं है। 12वीं आयत मेरे साथ देखें, जिससे हमें फायदा है। मगर ऐ मर्दे खुदा, खुदा की बंदी, खुदा का बंदा, खुदा का मानने वाला जो कोई भी है, वहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल तमोथियस को कहता है, ऐ मर्दे खुदा, आज आप यहां अपना नाम लगा सकते हैं, ऐ मेरी बंदी, ऐ मेरे बंदे, तू इन बातों से भाग। क्यों इन बातों से भागना चाहिए? क्योंकि फायदा की नहीं है। बहुत दफा, ओ मैं जी बहुत 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 दलेर बंदा हूं, खुदा का कलाम ईमानदारों को कहता है, अबलीस से भागो, बदी से भागो, गुनाह से भागो। ये नहीं कि अपने दलेरी का टंडोरा पीटते रहो और सैमसन की तरह जो शेरे बबर था, खुदा का शेर था और चूहे के उस जाल में फंस गया। उस दलाइला ने जो चूहिया की तरह तेज थी अपना मतलब निकालने के लिए उसे अपने जाल में फंसा लिया। हमें सैमसन की तरह दलेर, खुदा के काम करने को होशियार और कुव्वत वाले बनने की जरूरत है। और यूसुफ की तरह जब पोतीफार की बीवी कहे कि मेरे साथ बदी कर, तो गुनाह और अबलीस से हमें अपना चोगा छड़ाकर भागने की जरूरत है। इससे फायदा है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाज नारास्तों की महफिल में खड़ा ना हो, उससे भाग। बदी से किनारा कर। खुदा का बंदा पालूस कहता है, ऐ मेरे बंदे, यानी कि ऐ मर्दे खुदा, खुदा के मानने वाले, तू इन बातों से भाग और गुनाह कर। कैसा लिखा है जी? नहीं, क्या लिखा है? तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर, हिल्म का तालब हो। तालब यानी कि ख्वाहिशमंद होना किसी बात को सीखने के। हमें भी रास्तबाजी के तालब होना है, नाराजगी के नहीं। हमें ईमान में मजबूत होना है, बेईमान नहीं बनना। बहुत दफा कहते हैं, वो दीनदार हो गया। दीनदार का मतलब है ईमान में मजबूत। जो दीन को बदल देता है उसे बेदीना कहते हैं, उसे बेदीना कहते हैं। ये नहीं कि वो दीनदार हो गया, नहीं। दीनदार बाइबल मुकद्दस उसे कहती है जो अपने ईमान में कायम रहता है। बेदीना उसे कहते हैं जो अपने ईमान को छोड़ देता है। सो हम सबको बेदीने नहीं बल्कि ईमानदार रहना है, मोहब्बत करनी है। मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डालती है। ये फायदे की बात है। अगर आज हम इस जुज को, इस जोहर को सीख लें, मोहब्बत सब गुनाह माफ करती है, जैसे खुदा हमारे गुनाह माफ करता है, एक दूसरे के करें। आमीन। एक दूसरे के करें। सबर, हिल्म का तालब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा रखने के रखने कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। आए हम खुदा के जुड़ चुके और अपनी जिंदगियों में उन गदूदों को देखें जो बहुत दफा हमारे मसीही ईमान को कीड़े की तरह शुरू होती हैं और बाद में ऐसी गदूद बन जाती हैं जो हमारी जिंदगी के लिए फायदा का बास नहीं। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए बड़े सादा तौर पर कह देते कि अगर तेरी आंख खराब है तो उस आंख को निकाल कर फेंक दे। अगर तेरा बाजू, तेरा हाथ तुझे, तेरा दाहिना हाथ तुझे गुनाह की तरफ लेकर जाता है, बेरहमली के लिए उठाता है, तो उस हाथ को काट कर फेंक दे। सादा तौर पर यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है, इससे पहले कि वो गुनाह का कीड़ा तेरे सारे बदन को खा जाए और गदूद बन जाए, उसे बढ़ने ना दे, उससे भाग, उससे किनारा कर। आए हम दुआ करें।